The following is a lecture on Udhav Sandesh, Bhramar Gita, from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 47, Verse 18, on the topic of Krishna Katha destroys everyone. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami on 29th December 1998, and 1999.
Mrigayurivakapindram divyat jadano charita lila karna piyus vipro
jadano charita lila karna piyus vipro
sakridadana vidhuta dvanga dharma vinashtaha sapadi griha kutumbam dinamut sri jadina bahava iha vihanga bhikshu charyam charanti अपिश जानीमा एव तत् कथा अपि त्रिवर्ग लता मूलन मूलनि इति तथापि न त्यक्तुं शक्नुमः किं कुर्मः इत्यास्य हे भ्रमर ऐसी बात नहीं है कि हम कृष्ण कथा के महाविनाशक स्वभाव को नहीं जानती जानती है फिर भी कथा नहीं छूट रही है इसे सबसे लास्ट में उस श्लोक आया था दुस्तेजस तत् कथा था कृष्ण की कथा का जो कथा रूप जो अर्थ है प्रयोजन है पुरुषार्थ वो हम लोगों से छूट नहीं रहा है मानो भ्रमर कहा कि तब कथा नहीं छूट रही है कथार्थ नहीं छूट रहा है कथा रूप अर्थ अर्थ मान वस्तु आती है क्या छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन नहीं छूट पा रहा है तो नहीं छूट रहा है तो भ्रमर इस आशंका कर सकता है कि तब कथा के दोष को आप अभी समझी नहीं है इसी से नहीं नहीं पूरा समझती है कथा में क्या महाविनाशक तत्व है मैं इसको पूर्ण रूप से जानती हूँ फिर भी कथा नहीं छूटती क्या विनाशक तत्व है इसमें राधा रानी कहती है जत अनुचरितम जिनका प्रतिक्षण किया गया चरित अनु का अर्थ प्रतिक्षण और चरितम का अर्थ चेष्टितम कृष्ण की जो सब समय चेष्टाएं होती हैं उनका चलना मुस्कुराना गोचारण करना रस करना कहीं भी यही लीला है जब अनुचरितम एव लीला सा एव कर्ण पीयूषम और वही कर्ण पीयूष है मतलब भगवान कृष्ण कितने आकर्षक हैं प्रकारांतर से इस श्लोक में वर्णन किया जा रहा है कोई सज धज कर या विशेष योजना बनाकर प्लान बनाकर के कोई करे तब वो अट्रैक्टिव हो ऐसी बात नहीं है अनुचरितम स्वाभाविक घर से निकले गाय चराने के लिए रास्ते में जा रहे हैं वही महामारक लीलाएं हो जाती महा आकर्षक उनका देखना हंसना चलना तो इसको अनुचरित कहते हैं देखिए अंग इस तरह से जस्य जत अव्यय है उसका अर्थ जस्य जस्य अनुचरितम प्रतिक्षण चेष्टितम अनुवाय इस तरह से लेना पड़ेगा प्रतिक्षण चेष्टा चेष्टा में क्या क्या चेष्टा कोई भी चेष्टा कृष्ण की उनका मुस्कुराना देखना या बात करना वन में भ्रमण करना तस्य अनुचरितम प्रतिक्षण चेष्टितम एव लीला वही लीला है तो अनुचरित लीला सा एव करण पीयूषम और वह जो लीला है कृष्ण की वो कर्ण पीयूष है, भौर है। शब्द मात्रेण एवं सुखदम न अर्थता, उसका अर्थ सुख देने वाला नहीं है, केवल कान में सुनने भर के लिए अच्छा लगता है। कर्ण पीयूष, अथवा इसका यह अर्थ होगा कि सुनने मात्र से ही वह कान के लिए अमृत है, फिर उसका अर्थ यदि समझ में आ जाए तो क्या कहना। वास्तविक अर्थ शब्द मात्रेण एवं सुखदम किं पुनः अर्थतः। तो ऐसे कर्ण पीयूष लीला का विप्रुट, अपनी विप्रुट, विप्रुट का कणिका, ये संस्कृत का स्त्रीलिंग शब्द है, कणिक विप्रुट, बिंदु या कणिका, उस लीला कथा की एक कणिका, उससे कर्ण पीयूष का कर्णामृत का एक विप्रुट कणिका, और कणिका का भी तस्या अपि सकृद अदनम, सकृद अपि सब जगह अपि अपि लगेगा। कर्ण पीयूष लीला कथा का की एक कणिका, और उस कणिका का भी केवल एक बार आस्वादन, और इसी से केवल कर्ण भर पीने से लीला कथा अमृत का, और वो भी एक बार सकृत अदनम, अदनम का अर्थ खाना, भोजन करना, यहाँ पीना अर्थ अदनम, और किंचित आस्वादनम इति अर्थ अदनम किंचित आस्वादनम, तेना अपि केवल उसी से ही विधूता विशेषेण खंडिता द्वंद धर्मा रागादय, राग आदि राग द्वेष सब द्वंद धर्म है, किंवा स्त्री पुरुष आदि परस्पर सख्य रूप धर्म है। स्त्री पुरुष का जो आपस में घर गृहस्थी है, सख्य है, बड़ा दोनों मिल करके घर बांधते हैं, काम करते हैं और सब करते हैं, इसको द्वंद धर्म कहते हैं। जो दो से चले उसको द्वंद धर्म कहेंगे, अकेले गृहस्थी की गाड़ी नहीं चलती है, द्वंद धर्म है। कई लोग मिल करके जिस काम को करते हैं जरूरी होता है उसको द्वंद धर्म कहते हैं। समाज में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे समाज की प्रथम इकाई है परिवार, परिवार के बाद देश है, समाज है, सरकार है, संघ है, ये सब इनको द्वंद धर्म कहते हैं। तो कृष्ण का जो अनुचरित है खेल खेलना, तो वही लीला है, और उस लीला वो लीला ही कर्ण पीयूष है, और उस कर्ण पीयूष लीला का केवल एक कण है, और वो भी केवल एक बार, जैसे तैसे भी कोई आस्वादन कर ले उसी समय उसका द्वंद धर्म विशेषेण खंडिता है, एकदम नष्ट हो जाता है। इतना व्यापक प्रभावशाली विष है यह। कर्ण पीयूष कह रही है तो आखिर निंदा करना है, तो इसका अर्थ है कि केवल कान के लिए अमृत है, और जब ही कोई कान में एक कणिका डाला तो उसका द्वंद धर्म विशेषण नष्ट है, विनष्ट है, एकदम ध्वस्त हो जाता। विधुत द्वंद धर्म होने के कारण विनष्ट है, विशेषण नष्ट है, असत्तुल्य है, सत्ताहीन के बराबर हो जाता है। देखिए यह अर्थ भी चलता है, लोग लोक में मानते हैं कोई भगवान की कथा सुनकर यदि भगवान के लिए दीवाना हो गया और घर की हस्ती के प्रति उसकी रुचि हट गई तो लोक में लोग जानेंगे ये तो नष्ट हुआ है, गया है। और जब एक कौर का इतना प्रभाव है तो कहीं कोई पूरा भागवत सुन ले तो क्या होगा, पूरा सरोवर ही उसको मिल जाए और उसी में पिया करे, नहाया करे, तब क्या होगा। एक कण पी ले तो राग द्वेष या मोह ममता सब ध्वस्त हो जाता। तो मानो भ्रमर कहता हाँ एक दो ऐसे हो सकते हैं, कोई ऐसे तो एक दो बहु कोई गिनती नहीं है कितने नष्ट हुए। कृष्ण के लीला कथा कितने नष्ट हुए कोई संख्या नहीं है, वह दीना भोगहीना इत्यर्थ। दीन उसको कहते हैं जिसके पास भोग की सामग्री न हो, वो दीन हो जाते हैं। राजा है, साल में 12 लाख सोने के मुहर की आमदनी थी, कृष्ण कथा सुने तो जाकर छाछ पी कर भजन करने लगे राधा कुंड पर रघुनाथ दस गोस्वामी। दीन नहीं कहेंगे क्या कर? दीन दीन हो गए से बहुत विहंगा आकाश गामित्वत दूरत आगता हंसा देह पक्षिणो अपि। विहंगा का एक अर्थ है पक्षी भी इस तरह से बेघर बार के हो जाते हैं, जबकि पक्षियों की परस्पर की आसक्ति बहुत प्रसिद्ध है, हमेशा साथ में रहते हैं द्वंद धर्म में, बैठेंगे बिजली के तार पर साथ में बैठेंगे, चोंच से चोंच पाक से पाक सटाए रहेंगे, इसको द्वंद धर्म कहते हैं। अतः है पक्षिणाकार से सारा सार विवेकी हंस हंस बन जाते हैं, सुनते हैं अनुकूल अर्थ है। सपदी तत्काल कल लीला श्रवणानंतरम देवा, लीला सुनते ही दीनम दुखितम गृह कुटुंबम उत्सृज्य, दुखित गृह घर को परिवार को संबंधियों को छोड़कर इह जहां वो लीला किए हैं कृष्ण लीला से इसका संबंध, तल लीला स्थाने वृंदा बने इत्यस। घर द्वार छोड़ दिए दीनहीन परिवार को, स्वयं भी दीन बनकर कहां चले आते हैं इह या जहाँ कृष्ण लीला किए हैं वृंदावन में, और आकर के तब जीते कैसे हैं वही बस कमंडल उठाकर मधुकरी करते हैं, प्राण वृत्ति मात्र चलते, इसी तरह जीते भिक्षु चर्जाम चलते, ये तो लीला कथा करती है। इस प्रकार के यदि आवेश नहीं हुआ तो इसका मतलब कि अभी यह कर्ण पीयूष कान में प्रवेश किया नहीं है। कर ले तो स्वपद तत्काल ध्वस्त हो जाएगी गृहस्थ। तो राधा रानी कृष्ण कथा की निंदा कर रही है, वास्तव में स्तुति गर्भित निंदा है, प्रशंसा है भगवत कथा की। जो राग द्वेष मिटना बहुत कठिन है, कोटि कोटि जन्म तक मुनि लोग जतन करते रहते हैं राग द्वेष नहीं मिटता है, लेकिन भगवान की कथा का एक कर्ण भी अगर पी लिए वही कान से तो सब दोष मिट जाता है जीवन को, भगवान में प्रेम हो जाता है और वह व्यक्ति अब वृंदावन को अपना लक्ष्य बना लेता है कि अब चले अब वही रहेंगे। तो जो लीला कथा किसी को ऐसा दीन बना दे घर छोड़ा दे तो मारक है कि नहीं? तो कृष्ण तो हम लोगों का घर बार छुड़ाए ही, हमको दीन किए, कृष्ण के समान उनकी लीला कथा भी महामारिका है विनष्ट करने वाली। ये दोष हम जानते हैं फिर भी नहीं छूट रहे। ये पर बसता है। कई टीकाकारों ने इसके अनुक्रम में इस तरह की बात लिखी है। तो सिद्ध स्वामी जी कहते हैं अपिच जानीमय तत्कथा त्रिवर्ग लता मूलन मूलनी, त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम इसको त्रिवर्ग कहते, त्रिवर्ग यदि लता है तो उसके मूल को ही उखाड़ने वाली है ये लीला कथा। जो व्यक्ति लीला कथा में रम जाता है अब वो धन काम और धर्म में नहीं रम सकता। त्रिवर्ग लता को मूल से उखाड़ने वाले है, फिर भी हम नहीं छोड़ सकते, क्या करें किन कुर्म अब क्या करें? इसका अर्थ है भ्रमर तुमको कोई उपाय मालूम हो तो बताओ जिससे हम कृष्ण कथा छोड़ कर कृष्ण की बात न किन कुर्म। फिर गोस्वामी जी बृहद वैष्णव तोषणी में कहते हैं तस निष्ठुरता किम वाच्य तच्चरितम अपि ये केचित सकृद अपि श्रेणुयुः ते अपि निष्ठुरः भवन्ति इति। कृष्ण इतने निष्ठुर हैं जैसा पूर्व जन्म में भी थे, बालिका वध किए, शूर्पणखा को विद्रूप किए, बलि महाराज का दान लेकर उनको रसातल भेज दिए, और क्या क्या इस तरह से किए, हम लोगों को छोड़कर चले गए। तो वे तो ऐसे निष्ठुर हैं ही, जो उनकी कथा सुनते हैं वे भी निष्ठुर हो जाते हैं जो बात सुनने से। और विश्वास चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इसके उपक्रम में वयम तो साक्षात तेन सह सक्षम कृतवत्यो जद दुखितो अभूम तत्किम चित्रम तत्र किम चित्रम। हम तो कृष्ण के साथ साक्षात रही है साथ में, तो हमको इतना दुख हुआ है, ये क्या आश्चर्य है। जो लोग साथ नहीं करते हैं केवल तल्लीला कथा अपि सुनते हैं, तो तल्लीला कथा अपि सर्व जगत संतापनी, समस्त जीवों को दुख में डालने वाली है। लोगों के दुख का कोई आश्चर्य नहीं, लीला कथा सब जगत को संताप में डाल देती है, जानते हैं फिर भी कथा नहीं छूट रही। इस तरह अनेक स्तुति गर्भ है, निंदा है। इस संसार में द्वंद्व धर्म में व्यक्ति पड़ा हुआ है, जीव हमेशा द्वंद्व द्वंद्व, समाज में रहना समाज में रहना, और समाज में किस लिए, कि समाज की सहायता से भोग प्राप्त करें, पैसा कमाएंगे, घर बनाएंगे, सुख से रहेंगे, ये रहेंगे। लेकिन जो भगवान की माधुरी को, भगवान के साथ अपने संबंध को सुन लिया है, जान गया है, उससे अब यह अच्छा नहीं लगता है। वो तो वृंदावन के तरफ प्रयास करता है। भगवत कथा के इस दिव्य स्वभाव का वर्णन किया गया है, यदि हम इस भव सागर के पार जाना चाहते हैं, राग द्वेष आदि से मुक्त होना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, उनमें चित्त का अभिनिवेश चाहते हैं, तो एकमात्र उपाय है कृष्ण कथा का श्रवण। इसको विपरीत तरह से निंदा के बैग में भर करके राधा रानी स्तुति कर रहे, भीतर माल दूसरा है, बैग दूसरा है। जैसे मान लीजिए भीतर केसर या अगुरु रखा हुआ है, और कोई भूल से उस पर बीड़ी लिख दे, तो लिखने से थोड़े बीड़ी हो जाएगा। तो भीतर दिव्य वस्तु है, इस पर बाहर से लगता है कि निंदा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान के कथा की प्रशंसा है। कथा का किस तरह असर होता है, एक तो सुनने वाले का, और भी एक बार सुनने वाले का द्वंद धर्म विधूत हो जाता है, विशेषण धूत, धूत कार से बिल्कुल ध्वस्त खत्म। अच्छा, उसका द्वंद धर्म तो विनष्ट धूत हुआ ही, वह भी विनष्ट विशेषण नष्ट, घर गृहस्थी गई। यह द्वंद धर्म से डरिएगा मत, राग द्वेष आदि से पर जाए, और घर गृहस्थी तो गई ही, वो अभी गया, विनष्टा उतना ही नहीं दीना, विनष्ट हो जाते हैं, और वो भी एक एक नहीं, कथा में इतनी शक्ति है कि एक साथ हजारों हजारों लाखों विनष्ट हो सकते हैं एक बूंद से। समझो जो भी सुनेंगे वो विनष्ट हो जाएगा, विनष्ट होकर के और दूसरों का भी विनाश करते हैं। क्या दीनम गृह कुटुम्बम उत्सृज, अपने दीन गृह और कुटुम्ब को छोड़कर चल देते। चक्रवर्ती पाजी कहते हैं, हे भ्रमर नचते एक द्वा त्रि व चतुः पंचा, किन्तु बहव पर सता पर सहस्रश्च, बहवह का अर्थ है सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों ऐसे हुए हैं जिनको कृष्ण कथा ने बर्बाद किया, नष्ट कर दिया एक एक में। दीनम का क्या अर्थ है, सपदी कथा श्रवण मात्र एवं गृह कुटुम्बम पितृ स्वश्रु आदि पर्यंतम अपि दीनम अन्यस्य उकार्य कस्या भावा, स्वो जग भोक्षते तद धन रहितम अपि। गृह को क्यों दीन है कहा गया है, गृह कुटुम्ब को, तो उसका अर्थ चक्रवर्ती पाजी करते हैं, पिता या ससुर आदि को स्त्रियां छोड़ देती है, पति को छोड़ देती है, अगर वे कथा सुनती हैं, या कोई दूसरा व्यक्ति पुरुष के लिए भी अर्थ लेकर चल रहे हैं। दीनम अन्यस्य उपार्ज कस्या भावात, उस घर में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, वही कमा रहा था जो कथा सुना दुर्भाग्य से। तो अब परिवार छोड़कर चला जाएगा तो परिवार दीन हुआ कि नहीं, जो कोई कमा कर देने वाला नहीं। दीनम का यह अर्थ है, अन्यस्य उपार्ज कस्य अभावात्। यहाँ तक कि स्व कल जब भोक्षते, कल जो खाया जाएगा तब धन रहितम अपि, कल क्या खाएंगे, कल की खर्ची नहीं है घर में, फिर भी चल दिया। तो कठोर हो गया, पागल हो गया, तो अब कुछ क्या देखेगा कि अब परिवार के लोग खाएंगे नहीं खाएंगे, मरेंगे क्या होंगे। कल जो भोजन करना चाहिए वो अभी धन घर में नहीं है, फिर भी चल देता है। जरूरत तब विच्छेद कातरम, विच्छेद कातरम अथवा दीनन का अर्थ है, जब वो वृंदावन जाने लगता है, भागने लगता है, तो उसके परिवार के लोग उसके विरह में दुखी रहते हैं, लेकिन फिर भी भाग जाता है। दीन है, आखिर उसी के विरह में मर रहे हैं, रो रहे हैं कि मत जाओ, रो रहे हैं बच्चे स्त्री, लेकिन फिर उनको भी छोड़कर चला जाता है। कथा सब कराती है, बल्कि मृतवे कुशबारी संजोगे न संप्रदाय हो, बल्कि अपने परिवार के लोगों को मृत्यु के मुख में डाल देता है, पुत्र और स्त्री को। और कुशबारी संजोगे न, बल्कि एक प्रकार से कुश और बारी, जैसे लोग मरने के बाद तिलांजलि देते हैं कुश लेकर, वो इस तरह से दे ही दिया कि मरो चाहे कुछ भी, अब तो हमको जाना ही है वृंदावन। कुछ बारी संजोगे न, हंत हंत ते स्त्री पुत्रा दयो मृयंता नाम स्वयं अपि सुखिनो नैव भवन्ति। राधा रानी कहते हैं ठीक है, तो स्त्री पुत्रादि को दुखी किया है, लेकिन स्वयं भी सुखी अगर वे हो जाते तब भी चलो एक बात थी, लेकिन स्वयं अपि सुखिनो नैव भवन्ति। इह आगत दीना गृहं त्यक्त्वा गच्छन्तः चित्त विच्छेदात् बराटक मात्रम अति ग्रंथों न गृहंती थी। दीन रहते हैं घर में, मान लीजिए किसी को कुछ पैसा भी है तो ये क्या सोचते हैं कि पैसा पास में रहेगा तो चित्त विच्छेद होगा, इसलिए कौड़ी भी लेकर नहीं जाते। पैसा रहने पर चित्त विच्छेद होता है कि ये खरीदे वो खरीदे ये खरीदे। कथा इस तरह से सुन लेते हैं कि आप धन भी अपने पास नहीं रखते। इस दीना का यह अर्थ है, गृहम त्यक्त्वा गच्छन्तः चित्त विच्छेदात् बराटक मात्रम अपि ग्रंथौ न गृहन्ति। बराटी का 20 कौड़ी का होता है सर, अब तो कौड़ी भी इधर के बच्चे समझेंगे नहीं। बराटी उतना भी ग्रंथौ न गृहन्ति, उतना भी अपने पॉकेट में या ग्रंथि में नहीं रखते। पहले के लोग ग्रंथ ही बांध करके पैसा लेकर के चलते थे, ग्रंथ ग्रंथी में इतना भी नहीं लेते, और भी एक दो तीन चार पांच नहीं, हजारों हजारों है। विहंगा पक्षिण भिक्षु चर जा, विहंगों की तरह पक्षियों की तरह चुन चुन कर खाते हैं। देखे बेचारे पक्षी दिन भर यहाँ से एक कण लिए वहां से एक कण लिए, दिन भर पेट भरने में लग जाते, ये नहीं कि एक जगह बैठ कर कहीं से पूरा खा ले। तो ऐसे हो जाते हैं कि अब स्थूल भिक्षा भी नहीं लेते हैं, गोधूम आदि कर्ण भिक्षा परिपाट्य, केवल गेहूं का चूर्ण थोड़ा थोड़ा ले लिए भिक्षा परिपाटी से, मधुकरी परिपाटी से। और न तो कहना की दत्तया स्थूल भिक्षा आती थी, भाव कोई अगर ज्यादा देता है भिक्षा तो भी नहीं लेते, नहीं तो चौथाई रोटी ले। पागल ऐसे बर्बाद, तो दूसरों को तो दुख में डाले ही, अपने भी सुख से खाकर नहीं रहते, इस तरह से हो जाते हैं। कृष्ण कथा की करामात, इतना नष्ट करने वाली कथा है फिर भी नहीं छूटती। यह इति पाठ अत्रै अस्मद् दुःखस्थान, जिस स्थान पर हम इतने दुखी हैं, रो रहे बिलख रहे हैं, यहीं पर वे भी फंस कर आ जाते। विहंगा क्यों कह रहे हैं, चक्रवर्ती पाजी कहते हैं जब किसी को फुसला करके चारा दे करके बस में किया जाता है तो उसकी उपमा पक्षी से दी जाती है, चिड़िया से। कहते हैं कितना चिड़िया फुसाया वो। ये सब चिड़िया लोग फस फस करके वृंदावन आते हैं। कहाँ आ जाते हैं? असमत दुख स्थान में वृंदावन है, हम लोगों के दुख स्थान में जहाँ हम दुखी हैं रो रहे हैं, फिर वहीं वो आ जाते हैं। और आ जाते हैं और ये भी चेष्टा करते हैं कि हम भी गोपी जैसा रोवे। अरे बाप, इतना पागलपन, हमारे भाव को नहीं जानते कितना दुख में है, उल्टे वो गोपी भाव प्राप्त करना चाहते हैं। कृष्ण कथा की ऐसी मादक शक्ति दिमाग पागल कर देती है। अस्मत दुख स्थाने व आगत्य अस्मत संगात भी महादुखिनो भवंती की बात। यहाँ आकर के हम लोगों के संग से और महादुखी हो जाते हैं। ते न इस तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती पाजी कहते हैं, गोपियां कहते न तत्कथाया बहुमत चंडिका मय धुस्तूर बीज चूर्णत्व। जब जिस चीज को खाने से आस्वादन करने से दिमाग खराब हो जाए, व्यक्ति परिवार छोड़ दे, पैसा भी न ले, मधुकरी भी ठीक से न करे और वो भी भयानक दुख के स्थान में चला जाए, तो इसका मतलब कि बौरा देने वाला, पागल करने वाला कोई चीज खाया है। तो इसीलिए चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं इस तरह से राधा रानी के उद्गार से सिद्ध हुआ कृष्ण की जो कथा है वह बहु मत्संडिका, मत्संडिका माने मिश्री, बहुत से मिश्री का चूर्ण बना करके और उसमें धतूर का बीज डाला गया कुट कुट कर। और एक आदमी सोचेगा कि तो मिश्री खा रहे हैं, लेकिन धतूर का बीज खाएगा तो अब तो दिमाग पागल होगा। कृष्ण कथा धतूर का बीज है और इसमें कुछ मिश्री, बहु मिश्री, बहुत मिश्री के बीच में रखा गया है सुकुट कुट कर। तो कुछ लोग खाए होंगे धतूर का बीज, हम लोग तो खाए नहीं। धुस्तूर कहते हैं संस्कृत में उसको, धतूर। तो कथाया बहुमत चंडिका मय धुस्तूर बीज चूर्णत्व, ये सिद्ध हुआ। कथावाचकस्य पक्षी को फंसाने के लिए उसको तो बताया गया एक कथा है, भागवत है, भागवत धुस्तूर बीज। और कथावाचक को क्या यहाँ कह रही है राधा रानी? साधु वेश छन्न महाघातकत्व, साधु के पोशाक से अपने को ढका हुआ महाघातक। जो कथा कह कह करके लोगों को इस तरह से कृष्ण की तरफ खींचते, महाघातक मतलब व्याध, व्याध। पुराण पुस्तक से जालत्व, श्रीमद भागवतम जाल है, जाल उसका, जाल में ही कोई फंसता है ना। पुराण पुस्तक से जालत्व, अतएव ते दनाद बनम भ्रमंत अति। इसीलिए जब डहेलिया कहीं घूमते हैं ये कथा बांचने वाले, एक वन से दूसरे वन में, तो एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमंतो अपि स्व कक्ष गृहित पुस्तका व दृश्यन्ते, अपने कोख में दबाए हुए भागवत को ही देखे जाते हैं, जाल लेकर के ही चलते हैं, कहीं भी फंसाना है। हमेशा जाल को अपने साथ लिए चलते हैं। स्वकक्ष गृहित पुस्तका व भवन दृश्यन्ते, झोला लेकर के तो चलते नहीं होंगे उस समय लोग। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से पहले के महात्मा के पास ये अटैची बैग और यहाँ का बना हुआ ये सब नहीं था, तो काख में दबा करके अपना जाल लेकर के चल रहे। अभी 10-20 आदमी मिलेंगे तो आप फैलाएंगे जाल, कृष्ण स्तु भगवान स्वयं आ गोविंद माद पुरुषम तमहम भजन, तो कितने चिड़िया आकर फंस जाए, फंसा फंसा कर इसी बौद्ध स्थान पर वृंदा में ला ला करके उनको भूंजेंगे, विरह के आग में भूंजेंगे, जैसे लोग पक्षी को भूंज कर खा जाते। इन सबसे सिद्ध हो रहा है, चक्रवर्ती पाजी लिखेंगे इन सबसे ध्वनित हो रहा है। स्वपक्ष गृहित पुस्तका दृश्यंते व्यासादी नाम जाल निर्माण कृत्व, जाल बनाए कौन है, किस फैक्ट्री में बनती है, व्यास आदि इसके निर्माता है, जिसका मास्टर प्लान बनाने वाला नारद है और व्यास इसको रचा है इस जाल को, एक जाल से बहुत जाल और महाजाली भक्ति वेदांत स्वामी है, एक जाल को कई तरह से फैला दिया जाल, जाल के समय कृष्णस्व और कृष्ण क्या है, कृष्णस्व परमेश्वरत्व न तत्त्व आदृष्टित्व, और इन सब को जाल बनाने को, जाल में फंसाने को और इस वृंदावन में लाने को सबको आदेश दिया है किसने, कृष्ण ने, क्योंकि कृष्ण परमेश्वर कंट्रोलर, ये तो दर्था में वह कृष्ण में परमेश्वरता गृहीता, कृष्ण इसीलिए परमेश्वरता को ग्रहण किए हैं कि ये सबको दुखी करना है हमको, गोप्य व सर्व लोका अति दुखाभव पतंतु इति तस्त विचार, गोपियों की तरह सब लोग दुख के समुद्र में गिरे यही कृष्ण का विचार है, इसीलिए अपने कृष्ण कथा का इतना प्रसार करवाया है, इद्रिस पर दुख दर्शनम एवं तस्य सुखम, इस तरह से दूसरे का दुख देखना ही कृष्ण का अपना सुख है, इद्रिस दुख दान जन्म फल भागी जथा सब भविष्यति न तथा व्यासादय, रायानी कहने का मतलब है कि इस तरह से दूसरों को दुख देना, घर गृहस्थी ध्वस्त करके और वृंदावन में लाना, दुखी करना, तो ऐसे तो सबको कुछ न कुछ पाप लगेगा लेकिन समस्त पापों का फल कृष्ण को भोगना पड़ेगा क्योंकि मूल वो है, ब्याह शादी या कथा कहने वाले को उतना पाप नहीं लगेगा क्योंकि बेचारे वो तो कंट्रोल में है कृष्ण के, इसलिए कहा करते इस तरह से राधा रानी कहते हैं इति परसता एवं ध्वनो अस्य पद्यस्य, चक्रवर्ती पाद जी कहते सैकड़ों ध्वनि है इस पद में, सैकड़ों बातें निकल सकते, सर्वे सिद्धांत को व्याजस्तु किया और सभी सिद्धांत के अनुसार वास्तव में भगवत कथा की प्रशंसा कर रहे, भक्त सर्वोत्कर्ष व्यंज का गेया, भक्ति सर्वोत्कर्ष को प्राप्त है, भक्ति की सर्वोत्कर्षता व्यंजक ये सब शब्द है, अत्र खग सदृशी कृत सज्जना नाम खेदना तस् त्याग व समुचित इतनुतात्मयम वाक्यम इति अभिजल्प, इस श्लोक में अभिजल्प है, कर्णामृत से करें क्योंकि कर्ण पीयूष शब्द आया है,
यानि त्वच्चरुता मृता निरसना लेहियानि धन्यात्मना ये वा सैसव चापल व्यतिकरा राधा वरोधो मुखा या वा भावित वेणु गीत गतयो लीला मुखाम्भोरुहे धारा वाहिकया बहंतु हृदये तान्नीव तान्नीव मे,
हे कृष्ण आपकी लीला में हृदय हमारे हृदय में धारावाहिकतया बहंतु, धारा की तरह गंगा जी की धारा के समान प्रबहंतु बहे, हमारे हृदय में आपके लीला की धारा हमेशा बहती रहे, कौन तान्य व तान्यव में कौन कौन लीला धारा, यानी त्वचरिता मृतानि रसना लहियानि धन्यात्मना, जिनकी आत्मा धन्य हो चुकी है, जिन्होंने अपने जीवन का परफेक्शन पा लिया है, पूर्ण हो चुके हैं, ऐसे परम वैष्णव गण के रसना के लिए जो लेह है, रसना का जिह्वा का सबसे स्वादिष्ट पदार्थ है क्या, अमृत, कैसा अमृत, त्वचरिता मृतानि, आपकी लीला कथा ही अमृत है और वह अमृत धन्यात्माओं के रसना का लेह है,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम
राम। यदि कोई बहुत स्वादिष्ट पदार्थ कभी खाने को मिले और वास्तव में जिह्वा बिल्कुल ठीक हो, भूख भी लगी हो, तो उस समय जो सुख मिलता है आदमी के मुख से निकलने लगता है, आह, आंखें खिल जाती हैं, मुख प्रसन्न हो जाता है। कृष्ण का चरितामृत किनके जिह्वा का रसायन है? धन्य आत्मना, जो धन्य है। धन्य का अर्थ जिनके पास धन है, धन का अर्थ है कृष्ण के भक्त, कृष्ण की भक्ति से युक्त। जो आपकी भक्ति से युक्त है वे धन्य, वास्तविक धन उन्हीं के पास। तो जो धन्य है वही भगवान के लीलामृत को जानते हैं कि इसमें कितना बड़ा स्वाद है। तो रसना लेहियानी, उनके रसना के द्वारा लेह्य है। लेह्य का अर्थ होता है चाटना। जब खाद्य और पेय क्यों नहीं करें, अमृत तो पेय होता है, पेयानी कहना चाहिए था। लेकिन पीने में क्या होता है कि उसमें एक कमी है आस्वादन में। कोई से आप पी रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक साथ ही चला जाता है भीतर पेट में, लेकिन कोई चाटने वाली चीज रहती तो बहुत देर तक जिह्वा पर रहती है। यह ऐसा अमृत है कि धन्यात्माओं के रसना पर टिका रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ले इसलिए कहा जाता है कि धन्यात्मा गण इसको जिह्वा पर बहुत काल तक रखते हैं, गाते ही रहते हैं, गुनगुनाते ही रहते हैं। कौन कौन लीलाएं, कौन कौन चरितामृतानी? येवा शैशव चापलभ्यति करा राधा व रोधन मुखा। जो शैशव, शिशु का अर्थ होता है सुकुमार, हमेशा बच्चा उसका अर्थ नहीं होता है। संस्कृत के शब्दों का कई अर्थ एक साथ होता है। तो सुकुमार जिल्ला, आपकी सुकुमारता मतलब आपकी सुंदरता और आपकी चपलता, इन दोनों से मिश्रित, सौंदर्य और चापल्य से मिश्रित, और विशेष करके जब आप राधा को अवरोध करते हैं, तो दान वो दही बेचने आती है, जब आप उनको रोकते हैं या फूल तोड़ने से रोकते हैं, पनघट पर रोकते हैं, राधा को अवरोध करने वाली जो लीलाएं हैं, वे लीलाएं धारावाहिकया मम हृदय प्रवहंत, धारावाहिकया हमारे हृदय में आती रहे। और कौन कौन लीलाएं हैं? यावा भावित वेण गीत गतयो, भावित वेण गीत गतयो। यह भावित का अर्थ है जिसको आपने मान दिया है, वेणु को सत्कार किया है। भावना का अर्थ होता है सत्कार करना। भावित वेणु, वेणु का कितना बड़ा आदर है जिसको कृष्ण अपने हाथ में लिए रहते। तो आपके द्वारा सम्मानित वेणु की, वेणु के गीत के अनुसार जब आप गति लेते हैं, वेणु बजा बजा करके नाचते हैं या कहीं चलते हैं, तो भावित वेणु गीत गत, तो बहुत सुंदर है। लीला की विशेषता बताई जा रही है। सम्मानित बांसुरी के गीत के अनुसार जो आपकी गति होती है, या कहीं जाते हैं बांसुरी बजाते हुए, तो ये सब लीलाएं में हृदय धारावाहिक तया बहन, तो बहती रहे हमेशा। तो आइए जरा उन लीलाओं में से एक दो बहा करके देखा जाए। कृष्ण के आने का वर्णन शाम का किया गया था, तो एक और श्लोक में उनके आने का वर्णन भरतेंद्र जी कर रहे हैं। सांझ समय साजे साज ग्वाल बाल साथ लिए, मोहन मन ही हरि आवत हरु हरु। हरु हरु मने धीरे धीरे, जैसे हरे हरे आया था, धीरे धीरे आ रहे हैं। सांझ समय साजे साज, शाम के समय सज करके आते हैं। भगवान जब इधर से जाते हैं तो वन के फूल माला आदि वे धारण नहीं जाते। वृंदावन की अधिदेवी उनको ये सब अर्पण करते हैं और साथ में ग्वाल बाल मोहन मन ही मन को मोहने वाले हरि आवत हरु हरु धीरे धीरे आ रहे हैं। शीश मेर मुकुट लकुट कर लीने ओढ़े पीत उपरैना जमे टाको चार गोखर। शीश पर मोर मुकुट है, कर में लकुटी है और पीत उपरैना ओढ़े है, पीला दुपट्टा ओढ़े है जिसमें गोखरु टाका गया है, जरी की गई है सोने की। यह पीला वस्त्र है तो दूसरे दूसरे रंग के मणि चढ़ाए गए हैं। जहां हरिचंद बेनु को बजावत है गावत सुवावत है लिए साथ साथ गाय बाछर। बेनु बजा रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं और साथ में गाय बच्चे बछरू आ रहे हैं। नाचत ग्वाल मध्य लाजत मनोज लग, ग्वालों के बीच में नाचते ही आ रहे हैं जिसको देखकर कांबे भी लज्जित हो जाता है। आवे सखी बाजत गोपाल पाए घुंघर। हे सखी ध्यान से सुनो, कृष्ण आ रहे हैं, उनके पैर में घुंघरू कितना अच्छे बज रहा है। साझ समय साझ साझ ग्वाल बाल साथ लिए, साझ समय साझ साझ ग्वाल बाल साथ लिए, मोहना मन ही हरी आवत हरु हरु, मोर मुकुट लकुट कर लीने ओढ़े, शीस मोर मुकुट लकुट कर लीने ओढ़े, शीस मोर मुकुट लकुट कर लीने ओढ़े, क्यों चारु गोखरु पीतहु पर ना जाने, हरि चंद बेनु को बजावत है गावत सु, हरि चंद बेनु को बजावत है गावत सु, आवत है लिए साथ साथ गाय बछरु, आवत है लिए साथ साथ गाय बछरु, आवत है लिए साथ साथ गाय बछरु, आवत नाचत ग्वाल मध्य लाजत मनोज लखी, नाचत ग्वाल मध्य लाजत मनोज लखी, नाचत ग्वाल मध्य लाजत मनोज लखी, नाचत ग्वाल आव सखी बजत गोपाल पाय घुंघरु, आव सखी बजत गोपाल पाय घुंघरु, आव सखी बजत गोपाल पाय घुंघरु, आव सखी बजत गोपाल पाय घुंघरु। फिर एक लीला भक्तों हरिचंद जी ने लिखा है, राधा रानी कहती हैं कि हे प्रियतम, आप होरी खेलिए, आपको मना नहीं है, खेलो मिली होरी, ढोरो केसर कमोरी, और केसर की कमोरी भी ढरकाइए। कमोरी कहते हैं तोरी जैसा होता है, रंग जिसमें रखा है, तो घोड़ी खेलिए, केसर और रंग भी ढालिए और फेंको भरी भरी झोली, और अबीर आदि जो भी फेंकना हो भर भर करके फेंकिए। लज्जिए में विचारो ना, आप लज्जा मत कीजिए, जो भी रंग डालना हो डालिए। दारो सबे रंग संग चंगो हूँ बजाओ गाओ, आप सब सखाओं के साथ नाचिए, रंग डालिए और चंग डफ भी बजाइए। जो सबन रिझाओ सरसाओ शंख धारो ना, आप जो क्विज करना हो कीजिए, संकित मत होइए, होली खेलिए। लेकिन कहत तनी होरी कर जोरी हरिचंद प्यारे, हे हरिचंद प्यारे, हे कृष्णचंद्र प्यारे, आपसे मैं एक ही विनती करती हूँ हाथ जोड़कर, मेरी विनती है एक हाहाता ही तारो ना, उसको मत तारो, इस पर ध्यान रखो। नयन है चकोर मुखचंद ते परेगी ओ, या तो इन्हें आखी न गुलाल लाल डारो ना, ये आपका मुख चंद्रमा के समान है और मेरे नयन चकोर है, तो आंख में भी गुलाल डाल देंगे तो आपका मुख देखने में बड़ी बाधा हो जाएगी, नहीं देख पाऊंगी, इसलिए और सब जगह रंग डाली, आंख में गुलाल मत डाली। लाल का अर्थ लाल और लाल माने कृष्ण, प्यारा कृष्ण दोनों है। जाते इन आंखी में गुलाल लाल डारो ना, इसलिए आंख में गुलाल मत डाली, नहीं तो आपको देखने में बाधा होगी, बहुत बड़ी विपत्ति हो जाएगी। खेलो मिली होरी ढोरो के सरा कमोरी पे को, खेलो मिली होरी ढोरो के सरा कमोरी पे को, भरी भरी झोरी लाज जिए में बिचारो ना, भरी भरी झोरी लाज मिली होरी ढोरो के सरा कमोरी पे को, खेलो मिली होरी ढोरो के सरा कमोरी पे को, भरी भरी झोरी लाज जिए ने बिचारो ना, भरी भरी झोरी लाज दारो सब रंग संग चंग हूँ बजाओ गाओ, 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 सब साओ शंख धारो ना, सब नारी धारो शंख धारो ना, कहत निहोरी कर जोरी हरी चंद प्यारे, 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 मेरी बिनती है एक हाहाता ही तारो ना, मेरी बिनती है एक हाहाता ही तारो ना, नैना है चकोर मुख चंद ते परेगी ओ, 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 जाते ही मैं अखिल गुलाल लाल दारो ना, जाते ही मैं अखिल गुलाल लाल दारो ना, जाते ही मैं अखिल गुलाल लाल दारो ना, जाते ही मैं अखिल गुलाल लाल दारो ना। कोई गोपी कह रही है कृष्ण के विषय में कि कृष्ण टोना से भरा हुआ है। टोना माने जानते हैं ना, जादू नहीं होता है। टोना का अर्थ होता है मोहक मंत्र। आदमी अब किसी काम का नहीं रह जाता है, वो बकता रहता है, कुछ सोचता रहता है। तो इस तरह से कृष्ण के रूप का वर्णन करती हुई कोई गोपी चाहे राधा कह रही है, लाल पाग बांधे धरे ललित लखुट कांध, लाल पाग बांधे धरे ललित लखुट कांध, मन सर साधे सो करन चित छाए को, मन सर साधे सो वर्णन है। कृष्ण लाल पगड़ी बांधे हैं। भगवान वन में चलते थे, गाय चराते थे, तो गाय चराने में खुला सिर रखने पर घाम लगे। जैसे गोप पगड़ी बांधते हैं वैसे पाग बांधते थे। तो सुंदरे किम असुंदरम, सुंदर में क्या असुंदर लगे, सब सुंदर लगता था। कृष्ण वृंदावन बिहारी कृष्ण की पगड़ी बांधना एक विशेष लीला है। लाल पाग बांधे धरे ललित लकुट कांधे, और बहुत सुंदर छड़ी डंडा कान कंधा पर लेकर जा रहे हैं गाय चराने, छोटे से छड़ी डंडा, और नैन सर सांधे सो करण चित छाए, और नैन का बाण है संधान किए जा रहे हैं। अब हाथ में डंडा लिए ही अभी एक अस्त्र है, और आंख से बाण चला रहे हैं। तो करण चित छाए को, वो चित में छाए जाते छा जाते। जो वना झलक रंग रंग तकी रंग छूटी, जो वना झलक रंग कुटी लालक जाल जिए अरुझाय गो, अरुझाय को तो लाल पाग बांधे धरे ललित लकुट कांधे, नयन सर साधे सो करण चित छाए को, हमारे चित में छाए गया ऐसा नंदलाल। और उसकी जवानी झलक रही है अंग अंग में, जोगन झलक अंग रंग तक रंग छुटी, पता नहीं रंग क्या छुटी छुटी कुटिल अलक जल जी और झा, और उसका बिखरा हुआ कुटिल बाल तो हमारे जीव को ही फंसा कर ले गया, केसों में चित फंस गया। गरे गुंज माल उरे रजत विशाल नख, गरे गुंज माल उरे रजत विशाल नख, सीख लो रसाल अति लोनो श्याम काय को, नख से सिख तक रसाल है और उसका श्याम शरीर अत्यंत लावण्य युक्त है। करताया धीर धीर जमुना के तीर तीर, करताया धीर धीर जमुना के तीर तीर, टोना भरो डोलत धूतना नंद राय को, टोना भरो डोलत। इस पर कोई गोपी ये कह रही है कि अरे सखी, अगर उसमें कुछ भी टोना भरा है तो आप एक तरफ जाओ पता लगा लो कि कहाँ है। तो कहती है वो तो तीर जमुना के तीर तीर डोला तो सब जगह वही दिखाई देता है, पहुंच जाता है पता नहीं कैसे, तीर तीर डोल रहा है मतलब सब जगह जहाँ जाती हूँ तो वही दिखाई देता है आ जाता है। गरे गुंजमाल कर उरराजत विशाल, हृदय पर गले में झूली हुई माला बहुत सुंदर लगती है, उसका विशाल हृदय है। नख सिख सौ रसाल, नख से और सिख तक रसाल है। करत अधीर वीर वीर मन है सखी, हे सखी वो हमको अधीर कर रहा है। जमुना के तीर की टोना भर डोलत डुटौना नंद राय, धुतौना मतलब धुतौना का होता है प्यारा लड़का। लाल पाग बांध धरे ललित लखूट कांध, लाल पाग बांध नैन सर साध सो करन चित छाए को, नैन सर साध सो जो बना झलक अंग रंग की रंग छूटी, जो बना झलक छूटी लाया लक जाल जिए अरुझाए को, खुशी लाया लक जाल गरे गुंज माल उर रजते विशाल नख, गरे गुंज माल सिखल रसाल तिलोनो श्याम काय को, सिखल रसाल करता धीर धीर जमुना के तीर तीर, 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 टोना भरो दुखौना नंद राय को, टोना भरो दौलत दुखौना नंद राय को, टोना भरो दौलत दुखौना। कृष्ण के एक एक अंग में टोना भरा हुआ है, टोना भर कर देह में और घूम रहा है। तो जो भी गोपी देखती है वही पागल हो जाती है, टोना कर देते हैं, टोना भर और दौलत पर दुठौना नंद राय को। तो कृष्ण के रूप माधुरी की कामना करते हुए महाप्रेन्दु जी कहते हैं, किसी गोपी के भाव में ही कह रहे हैं, बोलो करनुपुर श्रवण के निकट सदा, बोलो करनुपुर श्रवण के निकट सदा, पदतल लाल मन मेरे बिहार करे, पदतल लाल मन बाजी करे बंसी धुनी पूरी रोम रोम मुख, बाजी करे बंसी धुनी पूरी रोम रोम मुख, मन मुसुकानी मंद मन ही हास्य करे, मन मुसुकानी चंद चलनी मुरानी व्रत रानी चित, हरी चंद चलनी मुरानी व्रत रानी चित, छाई रहा छवि जुग द्रिगण भर करे, छाई रहा छवि जुग द्रिगण भर प्राण हूँ ते प्यारे रहो प्यारे तू सदाई तेरो, प्राण हूँ ते प्यारे रहो प्यारे तू सदाई तेरो, पीरो पट सदा जिए बीच फहारो करे, पीरो पट सदा जिए प्राण हूँ ते प्यारे रहो प्यार तू सदाई तेरो, पात सदा जी है बीच फार करे
पात सदा जी
देखी देखी कुंडल झलक देखरी देख कुंडल झलक देखरी देख कुंडल झलक देखरी देख कुंडल झलक देखरी नैन द्वय छवि धरव कैसे नैन द्वय छवि धरव कैसे लगती तापर पलक लगती तापर पलक देखरी देख कुंडल झलक 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 देखरी देख कुंडल